शांति, हम सभी अपने व्यक्तिगत जीवन संसार को भी सुखमय बनाना चाहते हैं। हमें जीवन में सुख चाहिए, क्योंकि आत्मा की ये एक ओरिजिनल क्वालिटी है, इसलिए हमें सुख चाहिए न कि दुख चाहिए। हम सुख की हर क्षण एंजॉय करना चाहते हैं और दुख के दिन जल्दी जल्दी पूरे करना चाहते हैं। यही कारण है कि दुखमय स्थिति में भी सुख को हम ढूंढते हैं। तो हमारा व्यक्तिगत जीवन सुखमय हो, ये आत्मा स्थिति है। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, सुख का आधार सिर्फ धन साधन नहीं है। अगर ऐसा होता तो सभी धनाढ्य देश सुखी होते, परंतु हम जानते हैं कि उन धनाढ्य देशों में जहां साधन है, सुविधाएं हैं, परंतु लोग मानसिक रूप से बीमार है, रोगी हैं, दुख का अनुभव करते हैं। तो हमें अपनी आत्मा स्थिति को सुखी बनाना है, तो साधनों का सुख हमें महसूस होगा, वरना अपार धन वैभव, महलों में रहने वाले भी उदास होते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि मनोस्थिति सुख की नहीं। तो सुखमय संसार व्यक्तिगत जीवन रूपी संसार को सुखी बनाने के लिए हमें आत्म शक्तियों को विकसित करना जरूरी है। वर्तमान समय कलयुग अंत का समय है, इसलिए दुख के कई कारण हैं, कई परिस्थितियां हैं, कई अभाव है, कई स्वभाव के टकराव है। तो सब कुछ प्राप्त हो तब हम सुखी हो ऐसा नहीं हो सकता है। आज दुख की अनेक परिस्थितियां हैं, परंतु बाबा ने जो अष्ट शक्तियां हमें बताई हैं, तो एक तो संबंधों में हम बंधे हुए हैं। अगर इन अनेक अनेक संबंधों में कलह क्लेश है, टकराव है, मन मुटाव है, तो दुख का अनुभव होता है ना। जो संबंध हमने सुख के लिए बांधे, आज वही संबंध दुख के कारण बन गए। तो दो मुख्य शक्तियां संबंधों में सामंजस्य संबंधों में तालमेल लाने के लिए एक तो सहन शक्ति की जरूरत है और दूसरा समाने की शक्ति की जरूरत है. टॉलरेंस पावर और एडजस्टमेंट पावर की आवश्यकता है. तो बाबा ने जो आत्माभिमानी स्थिति हमें बनाने के लिए कहा है, अगर हम सोल कॉन्शियस बनते हैं, देह की हदों से हम ऊपर उठते हैं, तो बहुत जल्दी हम आपस में एक दो को स्वीकार कर सकते हैं. जो संबंध हमें मिले हैं कर्मिक अकाउंटर्स से, उनको हम दिल से स्वीकार करें. एक दो को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपस में टकराव होते रहते हैं, अनबन होते रहते हैं. क्योंकि देह भान में जब रहते हैं तो देह के जाति ज्ञाति धर्म भाषा रूप रंग आयु के भेदभाव उत्पन्न होते हैं. ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये बूढ़े हैं, हम युवा हैं. ये रूप रंग आयु के भेदभाव, धर्म जाति भाषा के भेदभाव. लेकिन बाबा ने जो ज्ञान का प्रथम पाठ पढ़ाया कि हम आत्मा हैं, एक परमात्मा के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई है. इस सत्य ज्ञान के आधार पर भाईचारा लाना सहज हो जाता है. हम एक दो को प्यार से स्वीकार कर सकेंगे और जहां प्यार है वहां टॉलरेंस भी आता है, सहनशीलता भी आती है. मां बच्चे की हर हरकत को सहन कर लेते. जहां प्यार है वहां एडजस्टमेंट भी आता है. भल विभिन्न भाव स्वभाव संस्कार है, पर प्यार के कारण हम दिल से एक दो को स्वीकार करते हैं, सहन करते हैं, सहज एक दो के लिए त्याग भी करते हैं और एक दो को सहयोग देते हैं. सेवा भाव आता है. इसलिए संसार तो संबंधों का ही बना हुआ है. अगर ये दो शक्तियां अपने में हम विकसित कर लें तो हम संबंधों में तालमेल ला सकते हैं. दूसरा है हमारे कर्तव्य, है ना. व्यक्ति जीवन में धन साधन प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई कमाई का साधन अपनाता है. कोई व्यापार करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई खेती करते हैं. उसमें सफल होने के लिए हमारे में परख शक्ति और निर्णय शक्ति चाहिए. हमें कदम कदम पर व्यक्ति को परिस्थिति को परखना होता है. अगर सही नहीं परखते हैं तो हम धोखा खाते हैं हमारा टाइम मनी एनर्जी वेस्ट होता है। तो व्यक्तियों को परखना होता है जिसके साथ हमें कामकाज करना है। तो योग से परख शक्ति आती है, क्योंकि योग से मन और बुद्धि को हम स्वच्छ और स्पष्ट बना सकते हैं। जब मनोस्थिति शांत है, स्वच्छ है, स्थिर है, तो हम व्यक्ति को, परिस्थिति को, बातों को परख सकते हैं। दूसरा, निर्णय शक्ति चाहिए। जो निर्णय हम करते हैं उसके परिणाम के लिए हम ही जिम्मेवार बनते हैं। उसके लिए बुद्धि शक्तिशाली चाहिए। बुद्धि निर्णय शक्ति है ना? अगर निर्णय शक्ति नहीं है तो व्यक्ति कंफ्यूज रहते हैं, क्या करें क्या ना करें, कंफ्यूजन मन में बुद्धि में आता है। पर अगर बुद्धि की लाइन क्लियर है, बुद्धि शक्तिशाली और शुद्ध है, तो हम बहुत जल्दी और सही निर्णय कर सकते हैं। तो योग से हमें परख शक्ति और निर्णय शक्ति प्राप्त होती है, जो हमारे प्रवृत्ति में, बिजनेस में, नौकरी में हम निर्णय कर पाते हैं। जीवन माना परिस्थितियां तो आएंगी ही, और उसे हमें पार भी करनी होगी। परिस्थितियां आवे ही नहीं, ये नहीं हो सकता है। उसके लिए सामना करने की शक्ति और सहयोग शक्ति चाहिए। परिस्थिति पूछकर नहीं आती, वो हमारे कर्मिक अकाउंट से कभी भी आती है। उस समय अगर हिम्मत हार जाते हैं तो हम परिस्थिति का सामना नहीं कर पाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। लेकिन योग से जब परमात्मा को हम अपना साथी बना लेते हैं तो हम एम्पावर हो जाते हैं और परिस्थिति का हिम्मत से सामना कर पाते हैं। आध्यात्मिकता बाबा का सत्य ज्ञान हमें समझाता है कि परिस्थिति परिवर्तनशील है। आज जो परिस्थिति हमारे सामने आई है वो आज नहीं कल बदल जाएगी। कोई भी परिस्थिति सदा स्थायी नहीं। आज सुख की स्थिति है तो हमें अभिमान करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज नहीं कल वो भी बदल जाएगी। आज कोई दुख की स्थिति आई, हमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज नहीं कल वो भी बदल जाएगी। हमें इसलिए सुख दुख, जय पराजय, ठंडी गर्मी, मान अपमान की विविध परिस्थिति में साक्षी बनकर एक रस रहने की आवश्यकता है। जीवन में कभी कोई प्रिय व्यक्ति की डेथ हो जाती है, अचानक प्राकृतिक आपदाएं आती है, नुकसान हो जाता है, तो हमें हिम्मत और धीरज से आगे बढ़ना है। अगर हम एक दो को सहयोग देते हैं और सहयोग से परिस्थिति को पार करते हैं, अगर हम दूसरों को सहयोग देंगे तो वो हमें भी सहयोग देंगे। सहयोग की भावना, सहयोग की शक्ति से मिलकर हम कितना भी मुश्किल कार्य को पार कर सकते हैं, है ना। कोई बहुत भारी चीज है, हम अनेक मिलकर उसको उठा लेते हैं। एक अकेले को वो परिस्थिति मुश्किल महसूस होगी, लेकिन एक दो के सहयोग से, कहते हैं ना, गोवर्धन पर्वत भी उठ गया। तो कोई मिट्टी पत्थर के पहाड़ को उठाने की बात नहीं है। आजकल ऐसे साधन बने हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, बड़े बड़े पहाड़ को भी हटा देते हैं। पर ये दुखों के पहाड़ की बात है। आपस में अगर हम सहयोग देते हैं तो हमें भी और सहयोग देंगे। कहते हैं ना कि सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा, मान देंगे तो हमें भी मान मिलेगा। इस संसार कर्म क्षेत्र में जो हम देंगे वो ही हमें मिलेगा। तो सहयोग शक्ति और सामना करने की शक्ति से हम परिस्थितियों को सहज पार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और व्यक्तिगत हमारी अपनी मनोस्थिति सुखमय रखने के लिए हमें दो अभ्यास, दो शक्तियों की आवश्यकता है। हम जब चाहें विस्तार में जा सकें, जब चाहें समेट सके, अर्थात सार में स्थित हो सके। हम जो पार्ट प्ले करते हैं वो पार्ट पूरा हुआ, उनसे हम डिटैच हो जाएं, अपने आप को न्यारा कर लें। इसको कहते हैं पावर टू विड्रो, जब चाहे न्यारे हो जाएं, जब चाहे प्यारे बन जाएं, जब चाहे सार में स्थित हो जाएं, जब चाहे विस्तार में जा सके। हम क्या करते हैं कि आपस में कोई बात आई, कोई घटना बनी, घटना घट गई, परंतु हम उसके प्रभाव से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते। किसी ने कुछ बोला, गलत व्यवहार किया, हम घंटों उसके प्रभाव में रहते हैं। ऐसा बोला, ये बोला, कैसा बोला, सबके बीच में बोला, वो घटना तो घट गई, बात पूरी हो गई, पर हम उसके प्रभाव से न्यारा नहीं हो पाते। कल लड़े थे, दिन बदल गया, दूसरा दिन आ गया, आज भी उसके प्रभाव में है, इसलिए मूड ऑफ होता रहता है, दुखी होते रहते। पर अगर ये अभ्यास हम करें, जब चाहे इन्वॉल्व हो जाए, जब चाहे साक्षी बन जाए, तो इसको कहते हैं पावर टू विड्रो, न्यारा होने की शक्ति, सार में स्थित होने की शक्ति। तो हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, नहीं तो उसी घटना के चिंतन में हमारी मनोशक्ति व्यर्थ हो जाती है। और समेटने की शक्ति, तो हम जो कार्य करना है उसके प्रति फोकस हो सकेंगे। अगर हम समेट नहीं पाते हैं और अनेक इच्छाएं हैं, रुचि है, रस है, तो हम जहां वास्तव में है वहां फोकस नहीं हो सके। तो समेटने की शक्ति, जीवन यात्रा है, जैसे यात्रा पर जाते हैं तो आवश्यक साधन ले जाते हैं ताकि समय पर खोल सके और समय पर समेट कर आगे की यात्रा पर जा सके। तो व्यर्थ विचार, व्यर्थ इच्छाएं, व्यर्थ रुचि और रस को हमें समेट लेना है। तो जो वास्तविक लक्ष्य है उसके प्रति हम एकाग्र हो सकेंगे, केंद्रित हो सकेंगे। तो योग में हम क्या करते हैं, बाबा जो योग अभ्यास सिखाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम यही अभ्यास करते हैं। हम कुछ क्षण के लिए सभी बातों से डिटैच हो जाते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति एकाग्र हो जाते हैं। ये अभ्यास हमें ये शक्ति देता है। हम व्यर्थ से निकलते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होते हैं। तो रोज का ये अभ्यास हमें साक्षी बनाता है। देहभान से न्यारे आत्मभान में स्थित होने का अभ्यास हमें साक्षी बनाता है। और जब साक्षी बनकर परिस्थिति को देखते हैं तो हमें राइट और रॉन्ग समझ में आता है। तो इस प्रकार व्यक्तिगत जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो हमें योग द्वारा अष्ट आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करना जरूरी है। तो आज के समय में, आज की परिस्थितियों में हम अपनी आत्म स्थिति को सुखी रख सकते हैं। और इस प्रकार केवल हम सुखी होंगे पर पूरा समाज और संसार सुखी नहीं होगा तो हमें दुख की फीलिंग जरूर आएगी। इसलिए पूरे संसार को सुखमय बनाना, और उसके लिए बाबा ने कि पूरे विश्व को सुखी बनाना है तो व्यक्ति को सुखी बनाना जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति से समष्टि बनती है। इसलिए हर व्यक्ति को सुखी बनाना जरूरी है और उसके लिए बाबा ने हमें बहुत अच्छी योजना बताई है कि संसार को सुखमय बनाना है तो एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत लाने की आवश्यकता है। आज दुख का कारण क्या है, अनेक धर्म है, अनेकों के हाथ में राज्य सत्ता है, अनेक जाति कुल के भेदभाव है, अनेक भाषा के भेद है और हरेक की अपनी अपनी मत है। कोई मनमत पर चल रहा है, कोई परमत पर चल रहा है, कोई शास्त्र मत पर चल रहा है, कोई गुरु मत पर चल रहा है, और ये अनेक मत, अनेक धर्म, अनेक के हाथ में राज्य सत्ता, अनेक जाति भाषा, यही आज लड़ाई झगड़े अनमन दुख का कारण है। आज आप साक्षी होके देखिए तो अनेक भेद है, रूप भेद, रंग भेद, भाषा भेद, प्रांत भेद, सीमा भेद, और यही लड़ाई झगड़े के कारण है। तो बाबा आकर के सुखमय संसार स्थापन करने के लिए हमें एक आत्म धर्म की बात सिखाते हैं कि देह धर्म तो अलग अलग अनेक है परंतु हम सभी आत्माओं का स्वधर्म एक ही है, शांति और पवित्रता। अगर हम आत्म धर्म में स्थित हो जाएं तो आत्मा का धर्म शांति है, पवित्रता है, सुख है, आनंद है, प्रेम है। हरेक आत्मा का स्वधर्म एक ही है। तो हम विश्व में स्वधर्म से सत धर्म स्थापन कर सकते, क्योंकि स्वधर्म एक ही है सभी का, कि मैं अविनाशी सत्य आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, शांत आत्मा हूं। तो एक मत बन जाएगी, भाईचारा स्थापन हो जाएगा, एक राज्य अर्थात मैं आत्मा राजा हूं इन कर्मेंद्रियों का। इंद्रिय रस में जब हम जाते हैं तो विकार उत्पन्न होते हैं, परंतु हम सभी कर्मेंद्रियों के राजा बन जाएं तो इंद्रिय रसों में डूबेंगे नहीं, दुखी नहीं होंगे, खुद पर शासन होगा तो दूसरों को अपना बना सकेंगे। कहते हैं ना, जिसका अपने आप पर शासन है वो विश्व पर शासन स्थापित कर सकते हैं। एक भाषा, शांति की भाषा, मौन की भाषा, साइलेंस की भाषा, हो सकता है एक दो की भाषा मुख के हम ना समझ सके, पर प्रेम की भाषा से हम सबको अपना बना सकते। कहते हैं ना, कितना भी जानवर को भी प्रेम की भाषा से हम अपना बना सकते। तो ये रूहानी प्यार की भाषा, एक ईश्वरीय कुल, हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, एक ईश्वरीय कुल के नियम मर्यादाओं को पालन करें तो जाति भेद, ज्ञाति भेद सब समाप्त कर सकते हैं। और इसलिए एक श्रीमत, परमात्मा के श्रेष्ठ मत पर चले, मेरी मत तेरी मत नहीं, वो तो भिन्न भिन्न होती है, परंतु एक परमात्मा की श्रेष्ठ मत को हम स्वीकार करें तो हम आपस में मिलके चल सकते हैं और सही कर्म कर सकते हैं। तो संसार को सुखमय बनाने के लिए बाबा ने ये विधि हम बच्चों को सिखाई है, व्यक्तिगत जीवन को सुखमय बनाने के लिए, आत्मशक्तियों का विकास करने के लिए कहा है। तो जो हम चाहते हैं कि सुखमय संसार हो, बेहतर संसार हो, तो हम सभी का सहयोग चाहिए। कौन सा सहयोग? आत्मधर्म में स्थित होने का, अपने गुणों को विकसित कर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर हमें उठने की आवश्यकता है। तो हम सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बना सकते हैं। ओम शांति।
सारा लुटाया।
Yeah.